श्रीमद् भागवतम स्कंद तीसरा अध्याय 25 योग की महिमा और श्लोक संख्या 42 मद्भयात् वाति वातः अयम् सूर्यः तपति मद्भयात् वर्षति इन्द्रो दहति अग्निर् मृत्युर् शरति मद्भयात् मद्भयात् वाति वातोऽयम् सूर्यस्तपति मद्भयात् वर्षति इन्द्रो दहति अग्निर् मृत्युर्शरति मद्भयात् मद्भयात् वाति वातोऽयम् सूर्यस्तपति मद्भयात् वर्षति इन्द्रो दहति अग्निर् मृत्युर्शरति मद्भयात् मद्भयाद्वाति वातोऽयम् सूर्यस्तपति मद्भयात् वर्षतीन्द्रो दहति अग्निर् मृत्युर्शरति मद्भयात् कृष्णकृपामूर्ति अर्थ चरणारविन्द भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद द्वारा अड़वा यह मेरी श्रेष्ठता है कि मेरे ही भय से हवा बहती है, मेरे ही भय से सूर्य चमकता है और बादलों का राजा इंद्र मेरे ही भय से वर्षा करता है, मेरे ही भय से अग्नि जलती है और मेरे ही भय से मृत्यु जाने देती है। तात्पर्य भगवत गीता में श्री भगवान कृष्ण कहते हैं कि उनकी अध्यक्षता के कारण ही प्राकृतिक नियम समस्त कार्यों में ठीक से काम करते हैं। मया अध्यक्षेण प्रकृति स्वयते च चराचरम। कोई यह न सोचे कि प्रकृति बिना अध्यक्षता के स्वतः कार्य रहती है। वैदिक ग्रंथ कहते हैं कि बादल इंद्रदेव द्वारा नियंत्रित होते हैं, ऊष्मा का वितरण सूर्यदेव द्वारा होता है, शीतल चांदनी चंद्र द्वारा वितरित होती है और वायुदेव की व्यवस्था में अंतर्गत प्रवाहित होती है। किंतु इन समस्त देवों के ऊपर श्री भगवान प्रमुख है। नित्यो नित्यानां चेतनश्चेतनानां एको बहुनाम यो विभाति कामा। देवता भी सामान्य जीवात्माएं हैं किंतु अपनी अज्ञाकारिता के कारण, अपनी भक्तिमयी प्रवृत्ति के कारण वे ऐसे पदों पर नियुक्त किए गए हैं। ये विभिन्न देवता या अधीक्षक यथा चंद्र वरुण वायु अधिकारी देवता कहलाते हैं। देवता विभागीय अध्यक्षों की भांति होते हैं। परमेश्वर की सरकार में केवल एक लोग या दो तीन लोग नहीं है, अभी तो लाखों लोग तथा लाखों ब्रह्मांड होते हैं। भगवान की सरकार व्यापक होती है और उन्हें सहायकों की आवश्यकता होती है। देवतागण उनके शरीर के अंग माने जाते हैं, ऐसा वैदिक साहित्य में वर्णन मिलता है। ऐसी परिस्थितियों में सूर्यदेव चंद्रदेव अग्निदेव तथा वायुदेव परमेश्वर की अध्यक्षता में कार्य करते रहते। इसकी पुष्टि भगवत गीता में इस प्रकार से हुई है। मयाध्यक्षेण प्रकृति ही स्वयते सचराचरम। प्राकृतिक नियमों का कार्यान्वय उनकी अध्यक्षता में होता है। पृष्ठभूमि में उनके रहने के कारण प्रत्येक वस्तु नियत समय से तथा नियमित ढंग से संपन्न होती है। जो मनुष्य श्री भगवान की शरण ग्रहण कर लेता है उसकी रक्षा अन्य समस्त प्रभावों से की जाती है। तब वह न किसी की सेवा करता है न किसी का कृतज्ञ रहता है। निसंदेह वह किसी की अवज्ञा नहीं करता, अवज्ञा नहीं करता, किंतु उसकी सारी विचार शक्ति भगवान की सेवा में लगी रहती है। भगवान कपिल का यह कथन कि उन्हें ही आदेश, उनके ही आदेश से वायु बह रही है, अग्नि जल रही है तथा सूर्य तपता है, हवावेश में नहीं कहा गया है। निर्विशेषवादी कह सकते हैं कि भागवत के भक्त किसी को भगवान बनाकर उसे उनके गुण प्रदान कर सकते हैं, किंतु न तो यह कल्पना है और न ईश्वर के नाम पर कृत्रिम शक्ति को थोपा जाना। वेदों में कहा गया है भीष्मादेहि सूर्यः, परमेश्वर के भय से ही वायुदेव तथा सूर्यदेव कार्य करते रहते हैं। भीष्मात् अग्निदेवश्च दत्युर्धवति पंचमः, अग्नि इंद्र कार्य करते रहते हैं। भीष्मात् अग्निश्चेन्द्रश्च मृत्युर्धावति पंचमः, अग्नि इंद्र तथा मृत्यु भी उन्हीं के निर्देशन में कार्य करते रहते हैं। ये वेदों के कथन है। अखल मंडलाकार व्याप्त यशराजं तत्पाद दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। तो पिछले श्लोक में कबीर मुनि अपनी माता को बताते हैं कि सारे जीवात्माओं को भगवान की शरण क्यों लेना है, क्योंकि इस भौतिक जगत में जो भी चर अचर है ये उनके अध्यक्षता में ही कार्य करता है और सारे जीवात्माओं के वे प्रधान नियंत्रक है। उनको परमात्मा कहा जाता है क्योंकि सर्वश्रेष्ठ है। तो उनका आश्रय लेना, उनकी शरण लेना हर जीवात्मा का स्वाभाविक कर्तव्य है। तो पहले भगवान प्रेम से समझाते कि हर जीवात्मा उनकी शरण लेनी है। लेकिन इस भौतिक जगत में ऐसे कई जीवात्माएं होते हैं कि जो फिर भी मानते नहीं है, जैसे कहा जाता है कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते, तो फिर उनको लात दिखानी पड़ती। तो यहाँ पे इस श्लोक में भगवान लात दिखा रहे, वो बता रहे कि देखो आप जिन चीजों से इस भौतिक जगत में डरते हो वे भी मेरे भय के कारण कार्य करती है। जैसे यहां पे बताया गया कि वायु मत भयात वाति वातो, जैसे जब क्या कहते हैं उसको, कोई थंडर आ जाता है या तूफान आ जाता है तो डरते हैं नहीं लोग, डरते हैं ना, क्यों डरते हैं, क्योंकि भय रहता है उसका, क्योंकि वो विनाशकारी रहता है, उससे हमारा अस्तित्व नष्ट होने की संभावना रहती है, इसके कारण डर रहता है। तो भगवान कहते हैं वो जो घूमता है ना, जो बहता है, वो किसके कारण बहता है, मेरे भय के कारण बहता है। हालांकि भक्तों को बताने की जरूरत नहीं है, भक्त भगवान किसके ऊपर जबरदस्त नहीं था, खास करके अपने भक्तों को जबरदस्त नहीं देगी मेरी शरण लो, मेरी मुझे डाल के मेरी शरण लो, नहीं, ये उनको डरा रहे जो उनसे उनकी शरण नहीं लेना चाहते, जिनकी आसुरी प्रवृत्ति है, जो इस भौतिक जगत में अपना ही ईश्वरत्व जमाना चाहते, ऐसे लोगों को बोलते अरे मेरे भय से ही वायु बहती है, सूर्य स्तंभति मत भया, हमें तो धूप का डर लग रही है ना, लू लग जाए, इसलिए अपने आप को बचाने के लिए बहुत सारे प्रयास करते हैं। तो जिसके कारण ये सूर्य भी तपता है वो बोलते हैं मेरा भय है, वो मुझे डर डर के जीना है। जिनसे आप लोग डरते हो वे लोग मेरे डर के कारण कार्य करते हैं। वर्षति इंद्रो, इंद्र भी जो है जो आपको वर्षा देता है वो भी मेरे ही भय के कारण कार्य करता है। तो सोचिए जीवात्मा में भोग करने की इतनी प्रवृत्ति रहती है कि वो भगवान से डरना ही नहीं चाहता। लेकिन इस भौतिक जगत में कोई भी व्यक्ति भय से मुक्त नहीं है। कोई कह सकता है अपने छाती पे हाथ रखकर पूरे विश्वास के साथ कि मुझे किसी चीज का डर नहीं है? कोई है कोई? शास्त्र में कहा गया है कि कम से कम 9 प्रकार के तो भय आदमी को रहते ही रहते हैं। जैसे कहा जाता है कि भोगे एक रोग भय, जो भोगी व्यक्ति रहता है जिसको प्रचुर भोग करने की इच्छा है उसको किसका डर रहता है? रोग। समझो हमें पेट भर के देखे दबा के खाना है, रसगुल्ले या गुलाब जामुन या जलेबी या समोसे बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन कितने खाएंगे ना खाएंगे? खाते खाते मन में डर आ जाता है ना कि पेट ना बिगड़ जाए। तो इस भौतिक जगत में भोग भी करने जाए तो लोगों का डर रहता है रोग का, कहीं रोग ना आ जाए। भोगे रोग भय, कुले च्युति भय, कोई उत्तम कुल में जन्म ले लेता और समझो उसी कुल के किसी लड़के ने किसी निचले कुल की लड़की से शादी कर ली तो क्या होता है? हाँ, इज्जत का मामला है, कुल का पतन हो जाएगा, तो मान सम्मान का भय है। और ज्यादातर हम देखते हैं जो मध्यम वर्गीय लोग रहते हैं, बड़ों की तो छोड़ दो, उन्होंने तो लाज लज्जा छोड़ ही दी होती है पैसा के कारण। और जो निचले होते हैं उनमें तो कुछ है ही नहीं, क्योंकि जानवर जैसा जीवन जी रहे। जो बस मध्यम वर्गीय लोग रहते हैं वो बड़े, उनको बहुत अपने मान सम्मान की पड़ी रहती है, तो वो उनको डर किसका रहता है? कुले च्युति भ्रम, कहीं अपने कुल का पतन न हो जाए। फिर कहा जाता है कि कुले च्युति भ्रम वित्तीय नृपालाद भ्रम, ज्यादा धन हो तो पहले जमाने में क्या होता था? राजा टैक्स लगा देता था, कर ले लेता था। आजकल किसका डर रहता है? इनकम टैक्स वाला। इसलिए जहां जगह मिले और न दिखाई दे ऐसी जगह पे पैसा डाल देते हैं, बिस्तर के नीचे, तकिया के नीचे, गोडाउन में, यहाँ पे कचरा डालते हैं, ऐसी जगह में पैसा डाल के रखते हैं। क्यों? डर रहता है कहीं इनकम टैक्स वाले आके उठाना ले जाए पैसा। वित्त नृपालाद भय। फिर बोलते हैं रूपे जरा भय, जो रूपवान है, दिखने के लिए सुंदर है, युवा अवस्था में है, उसको डर किसका रहता है? व्याधि का। रूपे जरा भय, जरा यानी वृद्धावस्था का, बुढ़ापे का भय लगता है। कोई बूढ़ा होना चाहता है? एक भी सफेद बाल दिखने लगे तो तुरंत डाय करने के लिए भाग जाते हैं। एक दूसरे को दिखा रहे सार्वजनिक सत्य है कि हर कोई बचाना चाहता है अपने आप को। क्यों? कि हर एक व्यक्ति को बुढ़ापे का डर रहता है। कोई है? पूरी दुनिया में अगर सबसे ज्यादा बिजनेस कोई चल रहा है तो वो है कॉस्मेटिक इंडस्ट्री का। कहा जाता है अमेरिका में $72 बिलियन का टर्नओवर जो है वो केवल कॉस्मेटिक इंडस्ट्री का है। अगर समझो व्यक्ति को ये भय नहीं रहता तो इतना सारा पैसा बचता नहीं, फिर भी क्या करते हैं लोग? बोलते हमें डर नहीं है। डर नहीं है तो फिर क्यों ये सब कर रहा है? कोई एक हीरो था, भैया उम्र की 70 या 75 साल में अपने पैरों का चमड़ा निकाल पे गाल पे लगा दिया उसने। क्यों? जो सुर्खियां दिखती है ना वो ना दिखाई दे इसका। किसके? लोगों पर डर रहता है कहीं मैं बूढ़ा ना हो जाऊं। लेकिन बूढ़ा पर किसी को आज तक रुका है? किसी के लिए कि भाई चलो मैं तुम्हारे पास नहीं आता करके सबको बुढ़ापा है। जिसको ये भौतिक शरीर प्राप्त है उस व्यक्ति को बुढ़ापा है यार, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, ये आपको इस शरीर के साथ दिए हुए चार चीजें हैं भाई, इनको संभालो। फिर कहा जाता है बले रिपूप है, जो बलवान है उसको किसका भय रहता है? शत्रु का। जैसे हम कुत्तों को देखते हैं, एक गली में दूसरा कुत्ता आए तो भौंकना शुरू कर देता है, क्यों? उसको भी डर लगता है कि भाई यहां पर मेरा है इलाका, ये यहां पे कैसे आया है। कन्नड़ में कहावत है कि जैसे एक गली में दो शास्त्री, दो मिस्त्री, दो मंत्री और दो पुत्री यानी कुत्ते रह सकते हैं? नहीं, एक दूसरे का डर लेता है। अरे बले रिपु है, जो बलवान है उसको भाई किसका है? शत्रु का। और समझो कोई ललकार के बोले कि भाई उसमें से मुझे किसी चीज का भय नहीं है, तो सबसे बड़ा भय कौन सा है? काले कृतांतात भयम्, सबसे भयानक है मृत्यु। काल के सामने किसी की टिकी है? राजे आए, बड़े बड़े दिग्गज आए, क्या हुआ? समय सबको लपेट के लेके गया अपने साथ, भाई चलो। जैसे बाढ़ आती है, बाढ़ में सब कुछ बड़े वृक्ष छोटा सब कुछ धो डाल के निकल के ले जाता है, वैसे जब समय की बाढ़ आती है तो सब नष्ट हो जाता है। लेकिन एक ही चीज है जो हमें क्या देती है? अभय देती है। वो क्या है? ये सारे चीजों में हमें आसक्ति रहती है इसलिए हमें भय रहता है। समझो कोई व्यक्ति निरासक्त हो जाए तो भय रहेगा उसको? समझो किसी घर में हम किराए से रह रहे हैं और भूकंप आ जाए तो क्या होता है? हमें कुछ लेना देना रहता है? जैसे हम घर के बाहर है और वो गिर गया, हमारा क्या जाने वाला है? क्योंकि वो हमारा है नहीं इसलिए आसक्ति नहीं है उसको। और रस्ते से आप जा रहे हैं, आपकी एक कार है और किसी बच्चे ने दूर से गेंद फेंक दी और कार की ग्लास टूट गई, क्या होता है? हार्ट अटैक आ जाता है। क्यों? वो अपनी है ना, थोड़ा खरोच भी आए तो बार बार कपड़ा लेके साफ करेगा, क्यों? अपनी है। भय रहता है अपनी चीज के बारे में, जिसके प्रति आसक्त रहते उसी के चीज के बारे में भय रहता। तो अभय प्रदान करने वाली सबसे बड़ी चीज है इस दुनिया में वैराग्य। जब किसी चीज के बारे में वैराग्य हो तो आसक्ति नहीं रहेगी, फिर वो मिले या नहीं मिले। और ये वैराग्य कैसे प्राप्त होगा? जब हम जान लेंगे कि इस दुनिया में मेरा कुछ है ही नहीं, तब वैराग्य बन सकते हैं। जब हमें पूरी तरह से विश्वास होगा कि इस दुनिया में मेरा कुछ नहीं है, जिसको मेरा 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 कहता हूं वो मृत्यु के समय सबसे पहले मुझे वही छोड़ने वाला है। ये शरीर मृत्यु के समय सबसे पहले क्या छोड़ता है? हमें शरीर को छोड़ देता है, ये भी त्याग देना पड़ता है क्योंकि ये है नहीं हमारा। अगर हमारी चीज होती तो लपेट के लेके जाते ना, साथ में लेके जा सकते हैं। शास्त्रों का यही कथन है, वो हमारे पुरखों ने भी यही सुना है, गत वर्षों में हमने भी यही सुनते आ रहे हैं, फिर भी इसके प्रति जो आसक्ति है वो कम होती है, क्योंकि हम साधु संग करते हैं। और जब जैसे मंदिर के बाहर या वो मंडप के बाहर पैर पड़ता है तो जैसे कपड़े झाड़ देते हैं ना, वैसे बुद्धि को भी झाड़ देते हैं, और जो साधु का संग है फिर वही में गिर जाते हैं, कुछ रहता ही नहीं अपने साथ। संग तो करते हैं लेकिन अपना रंग नहीं बदलते। तो साधु का संग करना है ना, अपना रंग बदलना है नहीं तो वही रंग को ओढ़े अगर जीवन जीवन तक कई जन्मों तक भी साधु संग करे तो कुछ फर्क नहीं है। और इसलिए सबसे महत्वपूर्ण जानने वाली चीज भगवान यहाँ पे बताते हैं कि हमें जानना चाहिए इस भौतिक जगत में जो भी कुछ होता है वो उनकी अध्यक्षता के अंदर होता है, मैं करूंगा कुछ नहीं होता दुनिया में, आज तक किसी का हुआ? कबीर जी बहुत सुंदर कहते हैं, मैं करे बकरी गला कटाया जाए और तुई तुई करे चिड़िया बैठा मेवा खाए। इस दुनिया में जिसने भी कहा कि ये मैं किया, उसका क्या हुआ? गला कट गया। जरूरत नहीं कि हर समय भगवान ही आके गला काटे, बहुत सारे लोग रहते गला काटने के लिए। कोई इलाके में कोई बोलता है मैं यहां का दारा हूं, गुंडा, बस चार पांच साल चले जाते हैं, दूसरा कोई आ जाता है, फिर तू कहा मैं करके उसका गला काट देता है। कोई राजा आता है वो बोलता है ये मेरा राज्य है, ये मेरा सार्वभौमत्व है यहाँ पे, और कुछ सालों के बाद उसका ही घर का कोई पैदा हो जाता है जो उसको काट के फेंक देता है। ये पूरा इतिहास बता रहा है, मानव जाति का इतिहास हमें बता रहा है कि जिसने भी अपना मैं ज्यादा दिखाया उसका विनाश जल्दी, सबसे जल्दी उसका विनाश है। जरूरत नहीं कि हम भागवत और पुराणों का ही उदाहरण लें, कई उदाहरण है हमारे सामने अभी के। अभी तो सदा क्या हुआ उसका, लटका दिया ना उसको भी। जिसमें मैं यानी अहम ज्यादा है निश्चित रूप से उसका विनाश होने वाला है। जैसे परसों हम शिवरात्रि के दिन चर्चा कर रहे थे कि इस भौतिक जगत का अस्तित्व है मैं के कारण, और इस मैं के प्रतिनिधि कौन है? शिव जी। और शिव जी किस लिए प्रकट हुए? नाश कर। तो सोचिए जो मैं बढ़ाएगा उसका क्या होने वाला है, जो अपना अहंकार बढ़ाने वाला है उसका क्या होने वाला है? नाश ही होने वाला है। और विनाश से हर एक व्यक्ति को डर रहता है, इसलिए भगवान कहते हैं कि डरना ही चाहते हो तो मुझसे डरना क्यों, इसके आरे गहरे से डरना, क्योंकि मैं ही हूं, इस भय से भी मुक्त कर सकता हूं तुमको। और उनको भगवत पिता में भगवान बता देते सर्वधर्माणि परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच, चिंता ही मत करो बोलते, मैं तुम्हें बचाऊंगा सारी चीजों से। और फिर भी हमें डर रहता है, क्यों? क्योंकि विश्वास नहीं है उनके ऊपर, हमारा विश्वास है बाकी सारे दुनिया के ऊपर विश्वास रखते थे, लेकिन जो विश्वास पात्र व्यक्ति है उसके ऊपर ही विश्वास नहीं रखते है ना? अपने पुत्र, परिजन, परिवार, सगे संबंधी, मित्र, देश, इसके ऊपर हमारा विश्वास है, जो अंत में सब हमें छोड़ के जाने वाले, कोई आएगा साथ में? शंकराचार्य उनके चरपट पंजरी में बहुत सुंदर रूप से बताते हैं, कहते कि यावत वायु निवसति देहे तावत कुशलम पृच्छति गेहे, गतवत वायु देहा बाहे भार्या विभ्यति तस्मिन काये, कि जब तक ये शरीर में वायु है यानी प्राण वायु है, प्राण है, तब तक क्या होता है? हर एक व्यक्ति आके आपको अपना क्षेम कुशल सब कुछ पूछता है। जैसे कोई जीवित व्यक्ति अगर दीवार को पेट लगाकर एक दो घंटा बैठे तो दुनिया आके पूछेगी क्या हुआ, क्यों बैठे हो आप, ठीक तो हो ना? और वही मरे हुए मुर्दे को हम जब दीवार को लगा के बिठाते कोई आके पूछता है अरे छह घंटा हो गया भैया उठ जा अभी, कोई बोलता है? मालूम हो गया अभी गया है ना, क्या वो तो वही पे है ना, गया कौन? प्राण पके के उड़ गया उसका। भार्या विद्या की तस्मिन काय कहते हैं, जिस स्त्री ने वो शरीर के साथ एकांत में कई क्षण कई दिन कई रात बिता रखे, वो स्त्री भी बोलती है कि भाई उठा लो अभी, क्यों? किसी को आसक्ति नहीं आपके प्रति, लोगों को ऐसे ही लगता है मैं जाऊंगा तो मेरे परिवार का क्या होगा, अरे तू कौन होता है उनका क्या होना है देखने वाला, क्योंकि हर एक व्यक्ति पैदा होने से पहले दो महीने भगवान ने उसके खाने पीने की पूरी व्यवस्था करके रखी है। जब कोई गर्भवती स्त्री 7 महीने की होती है, सात महीने का गर्भ उसको धारण रहता है तो उसके स्तनों में दूध आ जाता है। तो जीवात्मा इस जगत में जन्म लेने से पहले ही भगवान अगर उसके खाने की व्यवस्था कर देते हैं तो जब वो यहाँ इस भौतिक जगत में आता है तो क्या उसको खाने को नहीं देंगे, भूखा मारेंगे उसको? विश्वास नहीं है ना हमारा। ऐसे कहा जाता है कि पंछी करे ना काम, अजगर करे ना चाकरी। हाँ, पंछी करे ना काम, दाने दाने पे लिखा
है।
तो है विश्वास हमारा, हमें लगता है हमें वो हमारा मालिक देगा, जिसके साथ महीना भर हम काम कर रहे हैं वो देगा तो हमें मिलेगा। अरे उसको कौन दे रहा है? लेकिन उसके ऊपर विश्वास नहीं है ना। और यही विश्वास देने के लिए भगवान ये सारा ज्ञान दे रहे हैं। और कुछ जरूरत नहीं पड़ी उनको कि नहीं, तो लोगों को लगता है कि ये कृष्ण इसका हमें पूजा वीजा नहीं करना, क्यों? उसमें अहंकार बहुत है, हर जगह में बोलते हैं कि मेरी वजह से होता है। वही करना तो उसके वजह से होगा ना। अभी जैसे कोई बाप कहेगा कि मेरे कारण तू पैदा हुआ तो वो सच्चे या झूठे? किसी बच्चा बोले नहीं नहीं ये तो अहंकारी आदमी है, बोलता है मेरे कारण हुआ, कैसे हो सकता है? सही है ना, अगर वो बाप नहीं होता तो कैसे पैदा होता? तो अगर भगवान कहे कि भाई ये मुझसे आता है, मैं इसको देता हूं, तो उनमें कहा अहंकार है? अगर मिथ्या अहंकार है, हम सोचने लगे कि मेरे कारण इस दुनिया में पानी आता है, कहां से आएगा? आएगा मेरे कारण, किसी ने दो झापड़ दिए तो आंखों में से हमारे पानी आएगा, वही पानी के स्रोत होंगे। नहीं तो कई लोग रोते भी है तो पानी नहीं आता, क्यों? क्योंकि वो उनके नियंत्रण में नहीं है पानी आना है या नहीं आना, ये सब भगवान की कृपा से होता है। कुछ चीजें जो उनके भाई के कारण होती है, कुछ चीजें जो उनके अध्यक्षता के कारण होते हैं, और कुछ चीजें होती है उनके प्रेम के कारण होती है। और भगवान के भक्त जो रहते हैं वो उन चीजों को, उन घटनाओं को भगवान की कृपा करके अपने जीवन में स्वीकार लेते हैं, क्योंकि उनको मालूम है कि सारे चीजों के स्रोत केवल एकमात्र भगवान। और इसलिए कोई भक्त जब भगवान की स्तुति करता है तो वो क्या कहता है? जैसे ब्रह्मा जी हमारे संप्रदाय के महान आचार्य, वे स्वयं बताते पहले ही श्लोक में, ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिर आदिर गोविंद सर्व कारण कारणम। ईश्वर परम कृष्ण, ईश्वर यानी नियंत्रक, और सबसे बड़ा नियंत्रक कौन है? कृष्ण। सर्व कारण कारण, सारे कारणों के कारण है। अनादिर आदिर गोविंद, सारे चीजों के वे आदि है। और वे कौन है? गोविंद। गोविंद शब्द का अर्थ क्या है? गो याने पृथ्वी, गो याने गाय, और गो याने हमारी इंद्रिय, और बिंद यानी जो आनंद देता। तो गोविंद माने क्या? गोविंद माने वे जो इस पृथ्वी को, हमारे शरीर को, हमारी सारे इंद्रियों को, और गायों को जो आनंद प्रदान करते हैं, वे है गोविंद। फिर ऐसे व्यक्ति को छोड़ हम किसी लल्लू पंजों को अगर भगवान माने और उसकी सेवा करने लगे तो आनंद मिलेगा? बिल्कुल। अगर किसी यंत्र को चालू रखना, सोचो ये फैन है, इसको अच्छी तरह से कार्यरत रहना है तो क्या करना पड़ेगा उसको? क्या करना पड़ेगा? बस साफ सफाई करके चलता रहेगा, तो कनेक्शन देना पड़ेगा। नहीं, जब आप उसको विद्युत जनित्र के साथ जुड़ा देंगे तो कार्यरत रहेगा। तो उसी प्रकार से जीवात्मा को भली भांति संसार में जीना है तो क्या करना पड़ेगा? देना पड़ेगा, जुड़ना पड़ेगा ना भगवान से। और भगवान से जो जुड़ जाता है वो आनंद में रहता है। दुनिया चाहे लाख पागल कहे उसको, बुद्धिमान व्यक्ति को पागल व्यक्ति पागल कहता है और पागल को बुद्धिमान पागल कहता है। ये दुनिया की रीति है कि हर एक व्यक्ति पागल ही है यहाँ। भगवान के भगत भी पागल है और बाकी के लोग भी पागल है। भगवान के भक्त भगवान के लिए पागल है और बाकी के लोग वो पागल ही है, क्योंकि उनको माया नहीं मालूम है और भगवान भी मालूम नहीं। जैसे किसी व्यक्ति को किसी चीज का ज्ञान ना हो तो हम क्या कहते हैं उसको, पागल है। तो जो भक्त रहते हैं दुनिया को पागल बोलते हैं, दुनिया है वो भक्तों को पागल बोलती है, क्योंकि भगवान स्वयं बोलते हैं ये जगत पागलों से भरा हुआ है। मूढ़ो एम ना भी जाना थी, बोलते मूर्ख खैर मुझे नहीं जानते, शुरुआती यही से करते। कई लोग भगवत गीता पढ़ते नहीं, कुछ तथाकथित बुद्धिमान लोग हैं वो भगवत गीता पढ़ते ही नहीं, बोलते नहीं पढ़ना हमको। क्यों? क्योंकि पहले श्लोक में जहां पर भगवान उपदेश देना शुरू कर देते हैं खुल के छापड़ मार देते हैं मुख पे। कौन सा श्लोक है थोड़ा याद कर? नहीं, पहला ही श्लोक है द्वितीय अध्याय में कि जहां पर भगवान अपना उपदेश शुरू करते हैं। अशोचानंद शोचस्तम, क्या बोलते हैं? जिस चीज के बारे में सोचना नहीं है या दुख नहीं करना है, चिंता नहीं करनी है, उसके बारे में तुम चिंता कर रहे हो। और आगे क्या बोलते? प्रज्ञावादांश भाष्य से। प्रज्ञावादांश भाष्य से यानी कि आप बुद्धिमान जैसी बात कर रहे हैं, यानी हम किसी को बोलते हैं ना आज बहुत शाणा हो गया, मतलब बहुत समझदारी वाली बात कर रहा है, इसका मतलब क्या हुआ? अब बेअकल, आज अकल की बात क्यों कर रहा है तू? तो भगवान शुरुआत कैसे करते हैं? अब मूर्ख पंडित जैसी बातें कर रहा है तू, पहले ही झापड़ दे देते हमको, है तो पागल और अपने आप को बुद्धिमान तक बातें बना रहा है, बातें सुना रहा। तो इसलिए लोग क्या बोलते, नहीं पढ़ना आपको, हमको पागल बोलते हैं। क्यों पढ़े? अगर समझो आप कहीं पे गए हैं, किसी से कुछ पूछना चाहते हैं और पहले ही वाक्य में वो आदमी बोलते हैं अबे मूर्ख तुमको क्या मालूम है, तो फिर आपकी इच्छा होगी वो आदमी से जानने की? मन में उसे उठेंगे, मेरे को पागल बोलते, छड़ा हो गया वो, यहीं से शुरू हो जाएगी हमारी। इसलिए जो तथाकथित बुद्धिमान लोग हैं वो चाहते नहीं कि भगवत गीता हम पढ़े, लेकिन जब तक ये हमें साक्षात्कार न हो जाए कि भाई हम पागल हैं, तब तक असली ज्ञान को नहीं प्राप्त कर सकते। जैसे एक हिंदी में बोला जाता है, कई बार बॉम्बे में ज्यादा करके लोग बोलते हैं, यड़ा मानोगे तो पेड़ा खा सकते हो, यानी पागल हो तो मिठाई खा सकते हो, शाना मानोगे तो जूते खाओगे। वैसे ना, जो ज्यादा शाणा बनता है उसको ज्यादा लपेट पड़ती है, और पागल है करके दुनिया बोलती है छोड़ दो जाने तो पागल है उसके मुंह क्या लगना है, और कोई बुद्धिमान है कोई गलती करे तो दुनिया उसको कोसेगी, और पागल कुछ करेगा तो जाने दो पागल है करके छोड़ देगा। तो इस दुनिया में पागल ही रहे तो सुखी रह सकते हैं। श्रीमद् भागवत में स्वयं बताते हैं सुध गोस्वामी कि इस दुनिया में दो व्यक्ति सुख से रहते हैं, एक है मूर्ख और दूसरा है परमहंस, दोनों भी पागल है। एक इस भौतिक जगत से पागल है और दूसरा भगवान के लिए पागल है, तो दोनों को भी ये दुनिया से लेना देना है नहीं। सोचो कोई रास्ते से पागल जा रहा है और जाते जाते किसी के ऊपर थूक दिया उसने, तो आदमी उल्टा होकर उसको मारेगा? नहीं मारेगा, पागल है जाने दो इसके, क्या करना, निकल जाएगा। और वही कोई शाना आदमी करेगा तो अरे उसका कॉलर पकड़ के 10 लोगों को बुला के बताएंगे, देखो थूकता है करके, है ना। और जो अवधूत रहते हैं, जो भगवत भक्ति में पूरी तरह से लीन रहते हैं, उनको इस दुनिया की नीति नियमों का कुछ रहता ही नहीं, तो वो भी अपने दम में रहते हैं। इसलिए बोलते हैं ना रमता जोगी जो है, अरे वो क्या रमता जोगी है, उसका क्या कहना, वो अपने आप में ही संतुष्ट है, वो पागल जैसे है, क्योंकि दुनिया के हिसाब से जो लोग चलते रहते हैं वो सब उनको लगता ही नहीं, कहीं मिला था नहीं मिला, चल दिए। और ऐसी स्थिति होती है जब कोई व्यक्ति पूरी तरह से अपने मन को भगवान के ऊपर केंद्रित कर देता है। और भगवान यहाँ पे भक्ति योग की महिमा में सब कुछ बता रहे हैं कि जो पूरी तरह से अपने मन को, अपने चित्त को, अपनी चेतना को उनमें जोड़ देता है, उनमें लगा देता है, वही व्यक्ति सुखी हो सकता है। कितने लोग सुखी होना चाहते हैं? एक, दो, तीन, चार, पांच। यहां देख के क्या आप खड़े कर रहे हो? आपको नहीं होना है क्या? बाकी वाला हो जाए इसलिए मैं हूं, उसके लिए भी सोचना पड़ता है हमको। यानी ये भी मालूम नहीं कि हमको सुखी होना है करके, इतना दुख भुगत रहे तो सुखी क्या है मालूम ही नहीं, सोचना पड़ता है। इस दुनिया में हर एक व्यक्ति जाने अनजाने में किसको ढूंढ रहा है? भगवान को ही ढूंढ रहा है। हर एक व्यक्ति को सुख चाहिए ना, चाहे वो फिर क्रिश्चियन हो, इस्लाम हो, हिंदू हो, या और किसी जाति धर्म पंथ का हो। क्या ढूंढ रहे हैं लोग? भगवान को ही ढूंढ रहे हैं। लोग कहते हैं उसको सुख का नाम दे देते, असली सुख क्या है? भगवान तो है, उनको ही जाने अनजाने में हम ढूंढ रहे हैं। और जब तक उनको नहीं पाते असली सुख नहीं मिलने वाला। लोगों को लगता है कि बहुत सारा धन इकट्ठा हो मेरे पास तो मैं सुखी रहूंगा। कितने लोग सुखी हुए ऐसे? वित्तेन्द्रपाला भयम, ज्यादा धन आ जाता है तो इनकम टैक्स वालों का भय रहता है, तो सुख रहेगा जिसके पास भय है वहां सुख होगा। फिर आसपास पड़ोसी, फिर अपने पुत्र परिजन, इनका भय रहता है कि मेरा गला ना काट दे पैसों के लिए। कई लोगों को पैसा होने से आदमी सुखी है, कई लोगों को लगता है कि मैं दिखने के लिए सुंदर हो जाऊं, बस मैं सुंदर हूं, ये कल्पना के लिए वो बोलते कि मैं सुखी हो जाऊंगा। तो जो सुंदर है उनको पूछो, उनको शर्म आती है रस्ते से जाने के लिए, क्योंकि हर एक की नजर है उनके ऊपर, कुछ कर ही नहीं सकते। समझो कुछ लोगों के रहते ना जाते जाते कुछ अपना भी रह करके, लेकिन सारे लोग आपकी तरफ देखे तो आपको कैसा फील होगा? कुछ कर पाएंगे? पूछो ये फिल्म एक्ट्रेस और हीरो हीरोइंस को, उनका निजी जीवन ही व्यस्त नहीं रहता उनके लिए। कहीं बाहर चले जाए तो 100 लोग उनके पीछे, कुछ कर लिया अभी समझो पेशाब के ले जाना है तो 100 लोग पीछे, उनको तो मालूम नहीं कि इसको जाना है करके, ये जा रहे करके इसके पीछे चले जाएंगे, सब मुश्किल हो जाता है ना बेचारे। तो जिसके पास रूप भी है उसका यह हाल है, सुखी है? कई लोगों को लगता है भाई मेरे पास मोटर गाड़ी आ जाए, अपनी कार में घूमो तो सुखी रहूंगा। तो कार तो हवा पे नहीं चलती है, उसके लिए पेट्रोल तो चाहिए। जब पेट्रोल का बिल ज्यादा बढ़ने लगता है तो बेचारे का सुख किसमें परावर्तित हो जाता है? रोना पड़ता है। ठीक है यार, खुद पूरा पैसा भर के लिया हो तो ठीक है, नहीं तो हर महीने बैंक का भी एक रसीद आ जाता है इतना भरना है करके। सुख है इसमें, ये शरीर भी सुख का कारण नहीं है, है? जिसको हम अपना करके जीवन भर पैसा लुटाते हैं इसके ऊपर। सोचो हम ऐसी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं जिसका कुछ फायदा ही नहीं है हमको। आज तक इस शरीर को पोसने के लिए कम से कम एक पर्वत के समान तो रोटियां खाई होगी, सोचो थोड़ा। अरेबिक सागर इतना दाल तो पिया होगा हमने आज तक, क्या है? और अंत में ये शरीर क्या हमारे साथ आने वाला है? कुछ करने देने वाला है हमको? बिल्कुल। और फिर भी इसके प्रति आ सकती है, बल्कि इसके नहीं, इसके साथ जो जो जुड़े हुए उनसे भी आ सकती है, जैसे कि वही आने वाले साथ में। तो भय तो है ही, सबको भय है, क्योंकि भय ही हमसे कार्य करवाता है, अथवा कोई कार्य नहीं करता, करता कोई कार्य? भय है इसलिए कार्य करते रहते, लेकिन वो भय हमें उचित भय होना चाहिए। और भगवान के भक्त जो है उनको सबसे बड़ा भय कौन सा रहता है? अपराध का भय ज्यादा रहता है, और सबसे भय भी ज्यादा रहता है तो वो है माया का, क्योंकि माया के अधीन हो जाएंगे तभी भय, तभी हम अपराध करते हैं। इसलिए प्रभुपाद कहा करते थे, एक बार प्रभुपाद को पूछा, प्रभुपाद आप जब दक्षिणार्थी के लिए जाते हैं, हम श्रृंगार दर्शन लेते हैं ना भगवान का, तो क्या मांगते हैं हम भगवान से? कई सालों से हम मंदिर में आ रहे हैं श्रृंगार दर्शन के लिए, दर्शन आरती कहते हैं, यानी उस समय केवल भगवान का दर्शन लेना है। तो क्या मांगते हैं हाथ जोड़ के रूपालो जी? क्या मांगते हैं भगवान से हाथ जोड़ के? बस और कुछ नहीं। जिनसे मांगते हैं उनको सुनाई दिया, वो हमें सुनाई देगी, फायदा क्या? तो प्रभुपाद को जो पूछा गया कि प्रभुपाद आप क्या मानते हो भगवान से, प्रभुपाद ने बहुत नम्रता से कहा कि मैं भगवान से एक ही चीज मांगता हूं कि है भगवान आपकी माया बहुत प्रबल है, आपकी माया से मुझे बचाओ। यह है शुद्ध भक्त की मांग भगवान से। हम भगवान से डायरेक्ट बोलते, भगवान मेरी भक्ति दे, वो क्या पॉकेट में पड़ी है जो दे देंगे और लेकर के, उसके लिए तो हम पात्र भी नहीं है अभी तक। सही रूप से देखा जाए भक्ति तो वो कर सकता है जिसके मन पूरी तरह से भगवान में लगा, तो मन भगवान में लगाने के लिए पहले चीज जो है उससे बचना चाहिए ना, माया से। तो भगवान के जो शुद्ध भक्त रहते हैं वो भगवान से क्या मांगते हैं? भगवान तेरी माया से बचा ले, तेरी माया से बच जाऊंगा ना तो बाकी सब सुगम है, क्योंकि तू ही तारणहार, माया ही है जो मुझे भ्रम में डालेगी जिसके कारण मैं आपको भूल जाऊं। और इसलिए बड़े बड़े भगवान के भक्त होते हैं, जैसे महाराज कुलशेखर है, वे भगवान से क्या मांगते हैं? तो कहते हैं कि हे भगवान, मुकुंद मूर्धना प्रणिपत्य याचे भवंतम एकांतम यंतम अर्थम भवे भवे में तो भवत प्रसाद अविस्मृति तत् चरणारविंद। कि हे भगवान, हे मुकुंद, सबको मुक्ति देने वाले, आपके चरणों में नतमस्तक होकर मैं आपसे केवल एक ही चीज मांगता हूं, और वो क्या है? चाहे आप कितने जन तक मुझे इस भौतिक जगत में डाल दे, भवे भवे में तो भवत प्रसाद अविस्मृति तत् चरणारविंद, कि आपके चरणों को मैं ना भूलू, बाकी कुछ मांग नहीं आपसे मुझे, बस आपकी विस्मृति ना हो मुझे, यानी आपकी स्मृति बनी रहे। सबसे बड़ा डर भगवान के भक्तों का रहता है भगवान की विस्मृति का। वो बोले अगर मैं भगवान को भूल गया तो, जैसे रामानुजाचार्य एक बार अपने गुरु के पास आते हैं कांचीपुर के पास, और कहते हैं हे गुरुदेव, समझो मैंने जीवन भर भगवान का नाम लिया और अंत में कुछ कारणवश अगर मैं उनको भूल गया तो मेरी गति क्या होगी? कभी आपने सोचा? कभी सोचा हमने? भगवान के भक्त जो है वो ये सोचते हैं कि भगवान क्या होगा। तो कांचीपूर्ण बोले, मैं तो एक काम करते हैं, हम उनसे ही पूछते हैं जिनका हमें स्मरण करना। तो कांचीपूर्ण इतने बड़े भक्त थे, भगवान के प्रति इतना सुंदर भाव था उनका कि वे भगवान के साथ आमने सामने बैठ के वार्तालाप करते थे। तो वरदराज के पास गए और भगवान को हाथ छोड़ के बोले, भगवान ये मेरा शिष्य रामानुज जो आपका भक्त है और इसके मन में कुछ शंका है, उसका आप निरसन करें। तो बोले क्या शंका? तो रामानुचार्य ने पूछा कि भगवान ऐसा ऐसा है, तो बोले चिंता नहीं है, अगर मृत्यु के समय तुम मुझे याद नहीं कर पाए तो मैं याद करूंगा तुमको। तो फिर और क्या चाहिए होगा, इतना भगवान दे रहे और फिर भी हम चाहते हैं उनका स्मरण ना करें, बाकी सब स्मरण में रहता है, भगवान को ही भूल जाता है, बाकी सारी चीजें याद रहती है। हम कुछ महीनों पहले एक जगह पे गए थे, वहां पे एक भक्त है अभी भी बहुत अच्छे भक्त है, उनका जपमाला जो था जब करते रहते थे, लेकिन जनरली हम देखते हैं कि हम जब करते हैं तो एक साथ में एक दूसरी भी माला रखते हैं, किस लिए?
गिनने
के लिए, कितना कितना माला हो गया, क्या बोलते हैं उसका, काउंटिंग, काउंटिंग के लिए, काउंटिंग बीट्स हम रखते। तो हमने ऐसे ही पूछा कि भाई आपके बीडबैक को काउंटिंग बीट्स नहीं है? तो वो हंसने लगे, बोले दुनिया भर की बातें याद रख सकते हो तुम, और खुद कितना माला नहीं किया गया वो याद नहीं रख सकते, क्या फायदा फिर तुम्हारा। यानी जब हम करते इतना भी नहीं ध्यान से करते कि हमें ही मालूम नहीं कि हमने कितना माला किया, वो स्मरण रखने के लिए वो भी रखना पड़ता है कि भाई अभी दो माला हो गया, भाई तीन माला हो गया, भाई चार माला हो गया। यानी जो काम ध्यान पूर्वक करना है वही हमसे होता नहीं, और बल्कि 10 साल पहले किसी को 10 रुपए दिया होगा तो 10 बार याद हमने किया था, 10 बार उसको फोन किया था, ये हमको याद रहता है। लेकिन आप सुबह से लेके जो जब कर रहे हो वो कितना माला हो गया वो याद करने के लिए हमको काउंटिंग, कई कई बार तो वो भी भूल जाते हैं हम भेजने के लिए। तो इतने हम अनावधानी है, असावधान है, और फिर भी भगवान हम पे दया करते हैं कि भैया ठीक है कर रहा है ना, तो किसी ना किसी भगत को भेज ही देते, भैया जाओ उसको मुंह दिखा, क्या कम से कम तुमको देखो तो मेरी याद करेगा, हरे कृष्णा तो बोलेगा, है ना। तो इतने दयालु भगवान को छोड़कर हम यहाँ वहां घूम रहे हैं, और भारतवर्ष में तो देखो रोगों को रोग लग गया है, हर 5 साल के बाद कोई नया बाबा भगवान बन के आ जाता है और लोग उसके पीछे कुत्ते जैसे पड़ जाते हैं, क्या जरूरत है। अरे यहां पे चिरकाल से जो सबके नियंता नियंत्रक अधिष्ठाता होके बैठे हैं, उनको छोड़ छाड़ किसी मरने वाले, किसी बूढ़े लंबे दाढ़ी वाले, जो कफ वात पित्त का शरीर धारण किए बैठा है उसको भगवान मान के उसकी पूजा में अपना जिंदगी बर्बाद कर रहे, तो क्यों ना इस भगवान की हम सेवा करें जो सबके परम पिता है, जो सबके गुरु है और सबसे आकर्षक है, ऐसे व्यक्ति को छोड़ क्यों दूसरे की ओर जाए। और इसलिए भगवान ये ज्ञान अपनी माता को दे। तो अगर भगवान के बारे में ही सुनना है तो किससे सुनो? जिसने भगवान को जाना, जो जानने के लिए अथक प्रयास कर रहा वही बता सकता है। और हालांकि भगवान ये ज्ञान अपनी माता को दे रहे फिर भी वे कहते हैं कि मेरे बारे में सुनना है तो मेरे भक्तों से सुनो। सताम प्रसंगार मम वीर्य संविदो भवन तिरुत्करण रसायन कथा तज्जोष्णार अश्वापवर्ग वर्तमणि श्रद्धा रतिर भक्ति रंग संशय। सुनना ही है मेरे बारे में तो मेरे भक्तों से सुनो, क्योंकि उसका प्रभाव ज्यादा रहेगा, है ना। कई बार फिल्म देखने से अच्छा जिसने देखा उससे सुनने में आनंद आता है, आता है नहीं? अभी तो बहुत शौक था पहले इस कॉन में आने से पहले, क्यों? क्योंकि वो आदमी इतना चढ़ा बढ़ा के सुनाता है कि बस ऐसा लगता है आप देख ही रहे। तो भगवान के बारे में सुनना है उनके भक्तों से सुनना, वो भी इतना उसको मधुर बना देता है सुना, स्वयं भगवान कभी कभी आके बैठ जाते हैं सुनने के लिए, मालूम है। इसलिए वो बोलते हैं कि नाम बसामि वैकुंठे योगिनां हृदये शुनव मद भक्ता यत्र गायन तत्र तिष्ठामि नारद। जहां पे मेरे भक्त मेरा गुणगान करते हैं वहां पे आके बैठ जाता हूं मैं, क्योंकि उनको भी अच्छा लगता है सुनने के लिए उनके बारे में जब उनका भक्त बोलता है, तो फिर हम क्यों नहीं सुने। जैसे एक बार कहा जाता है कि दो अलवार दक्षिण भारत के, एक अलवार थे जो अपनी गुफा में बैठे और भगवत नाम का कीर्तन कर रहे थे, लीलाओं का वर्णन कर रहे थे। तो उसी समय उनके गुफा के बाहर एक व्यक्ति खड़ा था और वो सुन रहा था, और अचानक बरसात शुरू हो गई। तो उस व्यक्ति ने अंदर झुक के देखा और प्रणाम किया, कहे अंदर आ सकता हूँ थोड़ा बाहर। बोले ठीक है आइए। वो लेटे हुए थे, बोले एक आदमी अगर इस गुफा में लेट सकता है तो दो कम से कम आराम से बैठ सकते हैं। तो दोनों बैठ गए, और जब भगवान के भक्त वो भी दो अगर इकट्ठे आ जाए तो क्या होगा, क्या चर्चा करेंगे? ऑस्ट्रेलिया में इंडिया ने कैसे विश्व चषक जीता उसके बारे में, अब मंदिर में आके वही चर्चा होती है। ए, आज का मैच देखा क्या? गोविंद बड़ा खेल है, सचिन ने बहुत अच्छे आदि बोले, ऐसा चल रहा होता है हमारा, ये भगवान का दर्शन ले रहे हैं। लेकिन जो सही भगवान के भक्त रहते हैं वो क्या करते हैं, तुष्यंती च रमंती च, किसमें बोधयंती परस्परा, एक दूसरे को भगवत कथा बताने में आनंद लेते हैं। उनका भी वही हाल हुआ, वो दोनों बैठ के कथा शुरू कर लिए, कथा में बहुत आनंद आया। उसी समय एक तीसरा व्यक्ति बाहर खड़ा था, वो भी पूरा क्या कहते हैं उसको, हाँ जाड़े से कांप रहा था बेचारा। तो उसने अंदर झांक के देखा, बोला अंदर आ सकता हूँ? तो बोले आइए, अगर दो बैठ सकते हैं तो तीन खड़े तो हो सकते हैं ना, तो तीनों भी खड़े हो गए, तीनों भी भगवान के भगत, चालू हो गए तीनों का कथा पे। तो उसी समय एक चौथा आदमी बाहर खड़ा था, तो उसने अंदर झुक के देखा, रहे अंदर तो जगह ही नहीं, क्या गए? और वो कौन था मालूम है, शंकर चक्र गदा पद्मध हरि, बाहर भगवान हरि खड़े थे। क्योंकि तीन भक्त और वो भी अलवार जो भगवत प्रेम में पूरी तरह से डूबे हुए हैं, ऐसे खड़े होकर भगवत लीला करेंगे, भगवत लीला का गुणगान करेंगे तो भगवान के चुप बैठ सकते हैं, सो सकते हैं रंग श्रीरंगम में, उठ के खड़े हो गए और आ गए, भाई क्या चल रहा है घर के काम नहीं सुन रहा है। तो इतना रस है भगवत कथा को जो हम भगवान के भक्तों से सुनते हैं। और प्रभुपाद ने बहुत सुंदर विधि दी है हमें कि हर रोज सुबह हम आए, अपना कुछ समय दे और भगवान की कथा को सुने। अगर सुनेंगे तो दुनिया भर की बातें नहीं सुन पाएंगे, फिर दिमाग ठंडा होगा। इसलिए है ना, लोग जब कथा के लिए जाते तो बोलते कैसा हुआ, बहुत शांत लगता है वहां, क्यों? क्योंकि वहां उनके बारे में चर्चा की जाती है जो शांति दर है, जो सबको शांति प्रदान कर रहा है, और उनको सुनने से, उनके बारे में सुनने से मेरे अपने आप पवित्र हो जाता है, वासनाएं शिथिल हो जाती है, ठंडी हो जाती है, और फिर व्यक्ति असली शांति को प्राप्त कर सकता है। इसलिए आप सबका स्वागत है, हर रोज आइए, भगवत कथा श्रवण कीजिए और सुन के अपना भी जीवन सार्थक कीजिए, और जो सुना रहा है उसको भी उसका जीवन सार्थक करने का मौका दीजिए। आप आएंगे तो सुनाएगा, नहीं तो वो तो क्या करेगा बेटा। श्रीमद् भागवत में बताया गया कि जब भगवत कथा होती है तो तीन व्यक्तियों का उद्धार हो जाता है। कौन कौन है? और जो भगवत कथा कर रहा है, जो सुन रहा है, और जो ये दोनों चीजों के लिए जो व्यवस्था कर रहा है, ये तीनों को पवित्र कर लेती है भगवत कथा। कई लोग रहते हैं सुनने में भी नहीं उनको ज्यादा ये रहता और सुनाने में नहीं रहता, लेकिन अरेंजमेंट करने के लिए बहुत रहता है। जैसे माइक ला के रख देगा, किताब सामने ला के रख देगा, अच्छा सा आसन डाल के रखेगा, गार्लैंड ला के डाल देगा, सुने नहीं सुना बहुत, जैसे ही शुरू हो जाए बाहर लेके बैठ जाए, चिंता नहीं। लेकिन कम से कम बाकी सब तैयारी तो कर रहे हैं ना, कहीं ना कहीं तो सेवा भाव है। जब सेवा भाव है तो व्यक्ति समझ लो आज ना कल वो सुन ही लेगा भगवान। जैसे गंगा तीन लोगों को पवित्र कर देती है, वैसे भगवत कथा भी तीन लोगों को पवित्र कर ही देती है। तो किसी ना किसी प्रकार से जुड़ी जाए। चलो बैठ के सुन नहीं सकते, लेकिन पहले तो सेवा कर सकते हैं सर। सब लोग उठ के जाए तो आसन को तो फोल्ड करके रख सकते हैं, उसमें तो कुछ परेशानी नहीं है। यानी ये रखना प्रकार है ना, मन कृष्ण वेश है, यो और क्यों करके भगवान के सेवा में मन को लगाना, और यही एकमात्र उद्देश्य श्रीमद् भागवत। सारे उपनिषदों में, सारे वेदों में जो भी नियम दिए गए, सारे नियमों का एक परमोच्च नियम है, क्या है वो? सर्वम विधि निषेध योग, एत योग एव किंकरः, वो क्या? स्मर्तव्यम सततम विष्णु विस्मर्तव्यम न जातुचेत। कभी भी भगवान का विस्मरण ना हो और उनका स्मरण बना रहे, यही सारे विधि निषेधों का महत्वपूर्ण नियम है। तो आइए प्रयास करते हैं भगवान को याद करने का, उनके नाम का स्मरण करने का और उनके भक्तों का संग करने का। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम, श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।